તારીખ 11/7/1992 શ્રી સમયસર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 49.
મોક્ષાર્થી પુરુષે પ્રથમ તો આત્માને એમાંથી પ્રિય ભાવ પણ નીકળે છે, જિસકો આત્મજ્ઞાન કરના હો, જિસકો આત્માનુભવ કરના હો, પહેલો મોક્ષાર્થી હતા. આત્માનુભવ જિસકો કરના હૈ મોક્ષાર્થી નહીં હોવે પર આત્માનુભવ હો સકે એ વાત નહીં બનતી. આત્મજ્ઞાન અને આત્માનુભવ મને કે પહેલે પૂર્વ શરત હૈ, સબ્જેક્ટ ટુ કન્ડિશન, પૂર્વ શરત. જો જીવ મોક્ષાર્થી હોગા વહી આત્મા કો જાનને કે લીએ યોગ્ય ક્ષમતા વાલા હોગા. બિના યોગ્યતા જ્ઞાન પ્રાપ્તિ હોતી હૈ ऐसा वस्तु का स्वरूप में नहीं है, सिद्धांत ही नहीं है कि बिना योग्यता कोई ज्ञान की प्राप्ति हो जाए. आत्मसिद्धि में भी दिया मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष अभिलाष ऐसा शब्द दिया. मात्र मोक्ष अभिलाष मैंने इसके सिवा कुछ दूसरी अभिलाषा नहीं है. इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को प्रथम आत्मा को जानना, इस विषय पर आगे के पैराग्राफ में भेद ज्ञान की प्रक्रिया किस प्रकार से, भेद ज्ञान की प्रक्रिया की जाए तो आत्मानुभव होता है, ये बात आगे के पैराग्राफ में लेंगे. तो वेद ज्ञान वही कर सकता है जो मोक्षार्थी होता है. शास्त्र पढ़ने वाले को ये बात समझ में आ सकती है कि वेद ज्ञान करने से आत्मानुभव होता है, फिर भी वेद ज्ञान कर नहीं पाता है, वो नहीं पाता है, इसका क्या कारण है? कि यही कारण इसका है कि मोक्षार्थी बड़ा उत्पन्न नहीं हुआ. जैसे गुरुदेव की कृपा से हम लोगों को ये विषय अच्छी तरह परिचित हुआ है, हम अच्छी तरह समझते हैं. बाह्य साधन में तो शास्त्र स्वाध्याय प्रसंग आदि है, लेकिन अंतरंग साधन कौन है अनुभव करने के लिए? अंतरंग साधन वेद ज्ञान है. ऐसा हो सकता है कि मुमुक्ष घंटा, दो घंटा, चार घंटा, छह घंटा भी शास्त्र स्वाध्याय कर सकता भी है, करते भी होंगे, लेकिन वेद ज्ञान जो निरंतर कर्तव्य है, वेद ज्ञान को निरंतर कर्तव्य है और कितना समय करते हैं, कितना समय चलता है, ये प्रश्न हमारे लिए आवश्यक है।
वृक्षा सूत्र के साधार के तरह करेंगे सुख दिखता तो नहीं है, सुख दिखता तो नहीं है, तो मोक्षा सूचना कैसे करे करें?
मोक्षा सूचना दुख तो दिखता है ना, तो दुख भी नहीं दिखता है, मान लिया तो सुख नहीं दिखता है, लेकिन दुख दिखता है तो दुख भी नहीं दिखता है, तो दुख से दुख दिखेगा तो दुख से हटने का सहज प्रयास होगा, दुख ही नहीं दिखता है तो कोई इलाज नहीं, फिर कोई इलाज नहीं, दुख होने पर भी दुख नहीं दिखता है तो इसका तो कोई इलाज अभी नहीं, इसके लिए कोई इलाज नहीं। तो यहां पर हमारे आपस के सत्संग में ये प्रश्न करना चाहिए कि आप कितना स्वाध्याय करते हो, बात नहीं, वेदज्ञान कितना कैसा चलता है, जैसे मिलते हैं तो क्या आप तबियत का समाचार पूछते हैं, कैसे भाई आपका तबियत तो ठीक है, स्वास्थ्य तो अच्छा है क्या, ये पूछा तो है लेकिन देह की है, शरीर की, आत्मा का समाचार पूछते हैं, क्या स्वाध्याय चलता है, कैसा चलता है, नियमित चलता है या अनियमित चलता है, आधा घंटा चलता है, घंटा चलता है, दो घंटा चलता है, चार घंटा चलता है, कितना स्वाध्याय चलता है, उतना ही नहीं, इससे आगे विज्ञान चलता है क्या, इस तरह चलता है, कैसा चलता है, कितना चलता है, कब चलता है, ये आपस का समाचार का विषय हो जाना चाहिए, क्योंकि अंतरिम साधन तो वो एक ही है, तीन काल तीन लोक में अनुभव के लिए कोई अंतरिम साधन है तो ये विज्ञान है, बाकी तो सब बाह्य साधन है, शास्त्र का स्वाध्याय और सत्संग भी दूसरे साधन को इतने अनुभव के नजदीक का निमित्त है ही नहीं, पूजा भक्ति यात्रा आदि को, लेकिन कुछ नजदीक के निमित्त है तो ये शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग है, फिर भी वो बाह्य साधन है, स्वतंत्र साधन मोक्षार्थीपना आने से वेद ज्ञान हुए यही अंतरंग साधन है। तो हमने ये समझे, हम समझे तो हैं कि वेद ज्ञान करना चाहिए, सारा समय काल में जितने भी अधिकार है, प्रकरण है, सभी प्रकरणों में वेद ज्ञान का विषय आचार्य महाराज ने लिया है, नौ तत्वों का प्रकरण है तो मैं पांच साथ में दे दिया है, और दो अधिकार और भी है, ग्यारह अधिकार है, एक कर्ता कर्म अधिकार है और आखिर में एक सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, दोनों का नाम अलग अलग है, विषय को दोनों का एक ही है, सभी अधिकार ने वेद ज्ञान का विषय चलाया, मोक्ष अधिकार में भी वेद ज्ञान का विषय करा, प्रज्ञाचरण का विषय मोक्ष अधिकार में करा, तो मोक्ष का कारण दुख परिणाम है, मोक्ष अधिकार में केवल ज्ञान की बात नहीं की, वेद ज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र का विषय जो एजेंडा पर है वो उतना ही है કે અનાદિ સે પરિભ્રમણ કરતા હુઆ જીવ કો સંસારી જીવ કો અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ કા નાશ હોકર કે સમ્યક દર્શન ઓર આત્મજ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ કિસ તરહ સે હો. પાત્રતા કા વિષય ભી ઇતના સ્પષ્ટ રૂપ સે મિલ ગયા હૈ, કહીં કહીં આતા હૈ તો એસે આત્મા મોક્ષાર્થ જૈસે યહાં લિયા, એસે કહીં જગહ થોડી થોડી વાત આતી હૈ તો વિસ્તાર સે વાત વ્યાખ્યાન ભી કે લિયે એક હી વિષય પર કોન્સન્ટ્રેટ હો ગયે હૈ આચાર્ય. તો જો પાપ હૈ આત્મા કી હૈ વો કિસ તરફ ભેદ જ્ઞાન કરકે અનુભવ મેં આ જાય ઓર સંસાર સે પરિભ્રમણ કી અનંતતા કો તોડ દે. અનુભવ હોતે અનંતતા નાશ હોતા, અનંતતા કા નાશ હોતા હૈ. અનંત ભાવ કા જો બીજ હૈ મિથ્યાત્વ મેં વો બીજ હૈ વો ગલ જાતા હૈ, ઉસકા ક્ષય હો જાતા હૈ. फिर तो भव रहता है, दो चार से भव रहता है तो कोई अनंत काल की इसकी गिनती नहीं है कि लंबा है थोड़ा है ज्यादा है, कोई भी नहीं, खास बात नहीं
है. तो उसको तो अमृत के लिए कर उसको व्यवहार साधन देता
है. सत्संग है अमृत इसलिए कि असत्संग और कुसंग जहर है, इसलिए जहर को शायद एक दफे मारता है लेकिन असत्संग और कुसंग है वो अनंत भाव में अनंत मरण करवाता है. जहर से भी कुछ अधिक है वो भयंकर. इसके सामने सत्संग जैसा बाह्य साधन विश्व में कोई नहीं, लेकिन मोक्षानुवासी हो गए तब तो. और सत्संग में ये विषय चलेगा, विज्ञान करना कैसे करना, ये विषय भी सत्संग में चलेगा. बाह्य साधन उससे भी आगे बढ़कर के अंतरंग साधन में आना, वो भी सत्संग में ही बात चलेगी ना, उसी को तो सत्संग कहेंगे. स्वाध्याय करते रहो, सत्संग करते रहो, उतनी बात नहीं चलेगी, इससे आगे भी वो बात चलेगी. इसलिए सत्संग को अमृत बताया है, वो ठीक ही है. उस तरह मोक्षार्थ पुरुष को प्रथम को आत्मा को जानना, इसके बाद इसका ही श्रद्धान करना भी, यही आत्मा है इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूट सकेंगे, मुक्त हो सकेंगे. ये श्रद्धान की चारित्र प्रधान परिभाषा है. आचरण करने से श्रद्धान ऐसा करना कि आत्मा का आचरण करने से मुक्ति मिलेगी. श्रद्धान का तो विषय उतना ही है कि आत्मस्वरूप की श्रद्धा करना, मूल स्वरूप की श्रद्धा करना, इससे आगे कुछ नहीं है. आचरण करना पर्याय में और मुक्ति होगी पर्याय में, ऐसा कोई पर्याय का विषय श्रद्धान में आता नहीं. क्यों? कि श्रद्धा सिर्फ त्रिकाली पर्याय रहित श्रद्धात्मा को ही स्वीकार करती है. अपना विषय वहां समाप्त हो जाता है, इससे आगे इनका कोई विषय नहीं रहता. फिर भी यहां पंडित जयचंद्र जी ने चलते प्रकरण को प्रयोजन के साथ लेकर के चारित्र प्रधान अर्थ निकाला है. आचार्य के शब्द में से ये अर्थ निकाला है, पंडित जयचंद्र जी ने निकाला है. क्योंकि संस्कृत में तो उतना ही लिखा है कि ततः सैव श्रद्धातव्य ततः सैव अनुचरितव्य, उतना ही लिखा है। आचरण करने से मुक्ति होगी ऐसा संस्कृत में लिखा नहीं है। देखो तो यहां से ध्यान गया कि हमारे मुमुक्ष भाइयों में ये चर्चा तो अच्छी तरह चलती है कि श्रद्धा का विषय कितना, ज्ञान का विषय कितना, चारित्र का विषय कितना। तो ये बात तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश के प्रकाशन के बाद स्पष्ट हो चुकी है, अच्छी तरह स्पष्ट हुई है कि श्रद्धा का विषय एक त्रिकाली आत्मा है। तो एक मुमुक्षु भाई ने प्रश्न उठाया हमारे सामने, यहां तो ऐसा लिखा है कि श्रद्धा ऐसा करना कि यह आत्मा है उसका आचरण करने से कर्मों से छुटकारा होगा, तो ये श्रद्धा के विषय में ये बात कैसे आई? फिर हमने संस्कृत देखा तो उसमें तो बात नहीं लिखी है। फिर हम गए अनुवादक पंडित जी के पास, यहां तो इतना ही है और जगह भी कई जगह ऐसा है कि लिटरल ट्रांसलेशन नहीं देखा जाता। लिटरल ट्रांसलेशन मैंने शब्द सह अनुवाद, शब्द से अधिक भी नहीं, शब्द से कम भी नहीं। और भी जगह ऐसा है, ज्ञान तो ज्ञान गया हमारा दो जगह। फिर हमने जी को पूछा नेहमत भाई को कि ये शब्द अनुवाद नहीं है, कोई बात कमी बेसी लगती है तो ऐसा क्यों हुआ है? तो साधारणतः विद्वान में तो शब्द अनुवाद ही करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जयचंद्र जी ने जो भंडारी में लिखा है उसी का हमने अनुवाद किया है। मैंने उसका हिंदी हो चुका था, परम श्री प्रभावक मंडल में इसका हिंदी हो चुका था और हिंदी में से ये गुजराती किया है। संस्कृत देखा अवश्य है लेकिन गुरुदेव की एक आज्ञा थी क्या कि जयचंद्र जी ने जो किया है उसमें कोई हेर फेर हमें नहीं करना, इसलिए गुरुदेव के आज्ञा अनुसार यूं का यूं रखा है। बात पूरी हो गई, तो क्यों ऐसा है कि जयचंद्र जी ने ये न्याय निकाला है। श्रद्धा के आचरण प्रधान परिभाषा जो की वो जयचंद्र जी ने न्याय निकाला है। आगे भी है, वो 142 कोश है, वहां भी एक तो ध्यान गया था निजराज का 206 गाथा के पहले पहले मेरी कृति में आना है 328 पॉइंट। स्कृष्यताम स्वयं स्वयमेव दुस्तरे मोक्षे मुखे कर्म भी। कोई जीव तो अति दुष्कर ऐसे मोक्ष से परांगमुक्त कर्म बड़े स्वयमेव क्लेश पामो तो पामो, और दूसरे कोई जीव परे मैंने दूसरे कोई जीव मैंने अज्ञानी महाव्रत और पक्का भार से वो घना वक्त बहुत समय तक भगनाहा मैंने भग्न होता हुआ क्लिशता क्लिश पामो तो पामो, परंतु साक्षात मुख स्वरूप है निरामय है पद है और जो स्वयं स्वसंविद्यमान है ऐसा यह ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना कोई भी प्रकार से प्राप्त कर नहीं सकते हैं। तो उसमें मोक्षेन मुखे ही क्लिश्यताम महाव्रत तप भारेण, महाव्रत और तप का भार से क्लेश पामो तो पामो,
ऐसा करके जो बात लिया है उसमें कोई ध्यान दिया था, आगे पीछे का कोई यही गलत है। वहाँ मूल शब्द में से कोई अधिक लिया है तो वहाँ भी ये था कि जयचंद्र जी के अनुसार जो है सब नियम कायम रखा है। इसलिए कि दिगंबर संप्रदाय में एक ऐसे एक उस वक्त बात चल गई थी कि सौंदर्य वाले शास्त्र में अर्थघटन बदल देते हैं और न्याय के तौर से जो भी किया है जयसिंह जी ने वो न्याय विरुद्ध कोई बात नहीं किया है और आत्मकल्याण में भी वो अनुकूल है, इसलिए कोई फेरफार नहीं कर रहा ऐसा का ऐसा लग रहा। तो यहां पर भी आत्मा का सिद्धांत करना, मैंने शुद्ध आत्मा का सिद्धांत करना, शुद्ध आत्मा का सिद्धांत करने से क्या होगा कि आचरण की आत्मा के आचरण यही आत्मा है, एक ऐसा आत्मा है कि जिसमें लीन होने से कर्म से मुक्ति होगी, ऐसा आशय है सिद्धांत करने में, ऐसा आशय है, ऐसा न्याय निकाला है जयचंद जी ने। क्योंकि यहां तो मोक्षार्थी को श्रद्धा ज्ञान चारित्र करवाना है तो आत्महित कितना छिपा हुआ है श्रद्धा में, ये बात साथ साथ स्पष्ट कर दी है। एक जमाना ऐसा था कि आचार्य सिर्फ सूत्र लिखते थे और ऐसे पात्र जीव थे वो समझ जाते थे, सूत्र में सब समझ जाते थे, सूत्र बहुत संक्षिप्त रूप में होते हैं। फिर लोगों की योग्यता में कमी हुई तो इस सूत्र पर पीछे के आचार्यों ने स्पष्टीकरण देने के लिए टीकाएं लिखी। टीका में से भी नहीं समझ सके तो इसके बाद जो ज्ञानी पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने अपने प्रवचन दिए कि टीका में आचार्य महाराज ऐसे कहते हैं। पर ज्ञानियों को ऐसा लगा कि अगर ऐसी टीका नहीं होती तो हम भी इतना कैसे निकालते हैं, तो उत्तर वृत्ति होती है आचार्यों के प्रति, टीका करने वाले आचार्य के प्रति भी बहुमान आता है। पर अब के ऐसी योग्यता होगी कि ऐसे प्रवचन को भी समझाना पड़ेगा, जो टीका पर प्रवचन हुआ है उसको भी समझाने का समय आ गया। तो वो भी गुरुदेव की वाणी की जो हम लोगों ने सीधा परिचय किया है उनको तो थोड़ा बहुत समझ सकेंगे, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो तो गुरुदेव की वाणी को भी समझानी पड़ेगी, वो भी नहीं समझ पाएंगे वो क्या कहते थे। टीका पर जो प्रवचन दिया उस पर प्रवचन देना पड़ेगा। ऐसे दिन प्रतिदिन योग्यता की कमी होने से अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये श्रद्धा का स्पष्टीकरण दिया है यहां पर कि आत्मा का ज्ञान करना, फिर आत्मा का ज्ञान करके सिद्धांत करना और उस सिद्धांत में ऐसा सिद्धांत करना कि यह आत्मा है, उसका आचरण करने से मैंने उसमें लीन होने से अवश्य कर्मों से छुटकारा होगा, मुक्ति हो जाएगी और इसके बाद इसका आचरण करना है, ऐसा जान करके श्रद्धा विश्वास करके फिर अनुसरण मैंने आचरण करना, लीन होना अनुभव पूर्वक लीन होना, लीन होना मैंने राग पूर्वक लीन होना वो नहीं, अनुभव पूर्वक लीन होना, ये भी विशेष निकाला है। संस्कृत में तो उतना ही पढ़ा है कि सैव अनुचरितव्यस्य, उसका ही अनुचरण करना, लेकिन पंडित जी ने निकाला है क्योंकि राग के विकल्प में लीनता होती है, उनको भी भ्रम से आत्मा की एकाग्रता भ्रम से मान ली जावे तो वास्तव में आत्मा की एकाग्रता है ही नहीं, वो तो राग की एकाग्रता है। जैसे आत्मस्वरूप है तो मैं ज्ञान में आत्मा हूं, पूर्ण शुद्ध हूं, अभेद एक रूप हूं, ऐसा परम पारिणामिक भाव रूप ध्रुव हूं, ऐसा विकल्प में भी एकाग्रता होती है और ऐसे पदार्थ में, पदार्थ ज्ञान में आने से इस पदार्थ में एकाग्रता होती है, दो प्रकार की एकाग्रता होती है। तो पदार्थ में ज्ञान में आने से जो एकाग्रता होती है वो अनुभव पूर्वक होती है, राग की एकाग्रता वास्तव में आत्मा की एकाग्रता है ही नहीं, ये भूल होती है, एकाग्रता में ये भूल होती है। जैसे कोई एकांत स्थान में स्वरूप ध्यान का उद्यम करते हैं, आत्मा की एकाग्रता का कोई उद्यम करते हैं तो आत्मा का चिंतन चलता है, उस चिंतन में राग अधिक मंद भी होता है, विकल्प जो स्थूल है सूक्ष्म हो जाते हैं, जिसको अंतर्गल्प कहते हैं, और वहां कुछ मात्रा में कषाय मंद होने से शाता की शांति का भी अनुभव होता है, तो वहां ऐसा लगता है कि हमको आत्मा अनुभव हुआ, आत्म शांति हो गई। वास्तव में वो एकाग्रता नहीं है और आत्म शांति का अनुभव भी नहीं है, लेकिन ये इस जगह पर आत्मचिंतन में भी एक भ्रम होने की का अवकाश है, और कईयों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमें आत्मा अनुभव हुआ है, हमें शांति मिली है और हमारा आत्मचिंतन बहुत एकाग्रता से चलता है, तो अब तो हमारा मोक्ष मार्ग चालू हो गया। वास्तव में ये ग्रहित मिथ्या तो हुआ, क्या हुआ है, ग्रहित मिथ्या तो हुआ है,
बहुत बड़ी बात है,
कहां से कहां चला गया। ग्रहित मिथ्या तो इसलिए कहना चाहिए कि बुद्धिपूर्वक नया भ्रम पैदा हुआ, तो यहां पर देवसेन भाई एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए, क्या कहा था, कैसा प्रश्न खड़ा होना चाहिए जो तो आजकल नहीं होता है।
मोक्षार्थी की भूमिका वाले को तो ऐसा कहें जो मोक्षार्थी की भूमिका में आया हो, उनको तो ऐसा भ्रम नहीं होता,
उसको नहीं होगा, ये बात सही है, जो मोक्षार्थी होगा उसको ऐसा भ्रम नहीं होगा, लेकिन प्रश्न ये होना चाहिए कि ऐसी जो शांति और राग में एकाग्रता, विकल्प में एकाग्रता है और निर्विकल्प आत्मानुभव की जो शांति और एकाग्रता है, उसमें किस प्रकार का अंतर है कि जिस अंतर को समझने से ऐसा भ्रम नहीं हो रहे हैं, क्या ये प्रश्न यहां अपेक्षित है। एक चर्चा चल रही थी हमारे मुमुक्षुओं में चल रही थी, वैसे आत्म शांति का ही विषय चल रहा था, आत्मानंद का ही विषय चल रहा था, उनको निकल पाया प्रश्न पूछने का, आप जो आत्म आनंद की शांति की बात करते हो और ऐसे चिंतन में भी शांति होती है और निर्विकल्प अनुभव में भी शांति और आनंद मिलता है, तो दोनों में क्या भेद है? किस तरह से समझे कि ये सही शांति नहीं है, ये असली नहीं है, नकली है, ये कैसे समझे? तो फिर उन्होंने तो सरलता से उत्तर दे दिया कि ये बात हमने सोची नहीं है। क्या ये बात हमने नहीं सोची है? तो उत्तर को फिर सोचे नहीं हो तो उत्तर कैसे देंगे? लेकिन ये बात जो यहां पर जो प्रकरण चलेगा और चल रहा है यहां से स्पष्ट होगा कि जो नकली शांति है उसमें राग से भिन्न जो विज्ञान का विषय है, राग से भिन्न होने का जो प्रयास है वो नकली शांति में नहीं होता। विज्ञान पूर्वक ये बात नहीं हुई है, शांति नहीं हुई है। वहां तो राग साथ में है, जो राग का थोड़ा भी प्रकार है वो अभेद साथ में है। एक दूसरा कोई सबूत है तो वो उस प्रकार का है कि मानसिक शांति सिर्फ मन में ही होती है और आत्मानुभव की शांति असंख्य प्रदेश में होती है। देहातिक दशा है क्या? विकल्पातीत दशा है, मनातीत दशा है, देहातिक दशा है, वचनातीत दशा है। तो अतीत मैंने उल्लंघन करके आगे गए तो जो उल्लंघन करके आगे गए हैं उनको स्पष्ट तरह मालूम पड़ता है कि हमने इस भूमिका का उल्लंघन कर दिया है। पर जिसने ऐसा अनुभव नहीं हुए उस मानसिक शांति का अनुभव होता है, वो निशंक रूप में निशंकता रूप में नहीं आता, वो विचलित हो जाता है। अनुभव साक्षात होता है तो असंख्य प्रदेश में से सारा चैतन्य पिंड भिन्न हो जाता है। तो वज्रपात हो गए तीन लोक में खलबली हो जाए अपने अनुभव में शंका होती ऐसी निशंका जो दुर्गाधिकार में लिया है आचार्य महाराज। तो ये अच्छा लिया है पंडित जी ने, जो बात लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। अनुभव द्वारा उसमें लीन होना, राग में लीन होना वो बात नहीं, विकल्प द्वारा लीन होना वो बात नहीं, चिंतन में लीन होना वो भी बात नहीं, चिंतन मनन भोलन ये सब कुछ विकल्प की परिस्थिति है उसका बात नहीं है। अनुभव द्वारा नहीं होना, क्योंकि साध जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप उसकी सिद्धि की उसी प्रकार से उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। स्पष्ट परिभाषा है के साथ जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप जो अपना आत्मा है उसे कोई कर्म का संबंध नहीं है, उसकी विकार अवस्था निष्कर्म रूप है। साथ जो निष्कर्म अवस्था रूप, तो निष्कर्म अवस्था है वो कर्म का संबंध छोड़ने से उत्पन्न है, उदय से संबंध छोड़ के अनुदय रूप अवस्था है,
जहां कर्म भाव कर्म द्रव कर्म नो कर्म का कोई प्रबंध नहीं है, ऐसी जो साध्य अवस्था है उसके साथ भाव में अभेद अवलंबन रूप, अभेद मैंने अवलंबन से अभेदता भाव में पाई गई है, ऐसा जो शुद्ध स्वरूप है उसकी सिद्धि, उसकी सिद्धि मैंने प्राप्ति उसी प्रकार से उत्पन्न होती है, उपपत्ति मैंने उत्पन्न होना और दूसरे प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती नहीं, अस्थि नाश दोनों से साफ करके बात करूं। किन काल किन लोक में परमार्थ का पंथ एक ही प्रकार से होता है, एक होय त्रणकाल मां परमार्थ नो पंथ, परमार्थ मैंने आत्मकल्याण, आत्मकल्याण का जो उपाय है पंथ मैंने उपाय है इलाज है वो एक ही प्रकार है। क्योंकि आत्मा एक वैज्ञानिक पदार्थ है, अपना गुण धर्म समेत भरा हुआ, गुण धर्म से भरा हुआ एक वैज्ञानिक पदार्थ है और इसकी उपलब्धि अनुभव की उपलब्धि भी वैज्ञानिक तौर से एक ही प्रकार से होती है, दो प्रकार से कभी होती नहीं, अनेक प्रकार तो नहीं है लेकिन दो प्रकार की उसमें नहीं है, अन्यथा नहीं प्रकार से नहीं है।
हमारे मन में तो ये है कि ये साधु की प्रक्रिया तो आगे की है, मोक्षार्थ कितना ही प्रगट नहीं हो पा रहा है, निर्भर तो वहां है।
अच्छी बात है, वो फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं कि ये बात तो रही जो मोक्षार्थी जो काम करते हैं उसकी, लेकिन मोक्षार्थी कैसे होना, ठीक अच्छी बात।
तो भीतर में पहले अपने आत्मा को कुछ सवाल करना,
क्या
भीतर में अपनी आत्मा को सवाल करना है कि अरे आत्मा वास्तव में तुझे क्या चाहिए,
क्या
वास्तव में तुझे, जगत में बहुत से पदार्थ हैं, एक एक इंद्रिय विषय की सारी दुनिया है, जैसे कर्णेन्द्रिय का विषय एक संगीत है तो संगीत की एक बहुत बड़ी दुनिया है, इतने राग इतने रागिणी इतने वाजिंत्र, क्या कितने प्रकार के राजेंद्र है, तो दुनिया बड़ी खड़ी है, स्वाद की भी एक दुनिया है, कितने प्रकार के खान पीन के चीजें होती है, हर देश में हर जगह विभिन्न प्रकार की होती है, सारी दुनिया बहुत प्रकार की विभिन्नता से भरी हुई है। अपनी आत्मा को तुझे क्या चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो मोक्षार्थीपना नहीं आएगा, क्या मोक्षार्थीपना नहीं आएगा, मात्र मोक्ष विनाश, परिपूर्ण निर्दोष परिपूर्ण पवित्र परिपूर्ण शुद्ध अपनी दशा जिसको चाहिए उसी को ही उसी के अनुपात में ये ज्ञान का पुरुषार्थ चालू हो सकता है, अगर चालू हो सकता है तो, वरना चालू ही नहीं होता। आगे इस विषय की चर्चा आगे के स्वाध्याय में जब मैं आया था चला था कि जिसको जितना बड़ा टारगेट होता है उसी के अनुपात में उसकी पूर्व तैयारी होती है, जैसे हमें कोई इंडस्ट्री लगाना हो जिसमें 200 करोड़ या 500 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट हो, मैंने अरबों का
तो उसकी पूर्व तैयारी कितनी होगी, तो उसी तरह पाठ में होगी। और हमने कोई छोटी मोटी चीज खिलौना बेचने का दुकान लगानी हो तो चलो 100-200-500 रुपया का माल कहीं से खरीद ले होलसेलर से, और ये लारी जो बचे हैं ना 4-5 किया के गली गली में बेचते रहेंगे, तो लड़के लगाएंगे ले जाएंगे, उसको क्या तैयारी करनी है, उसको कुछ तैयारी आगे पीछे कुछ करनी नहीं करनी। तो ऐसे हमारा कोई ध्येय है कोई मामूली नहीं है, मनुष्य है उसका कोई ध्येय है वो मामूली नहीं है। हम क्या लेने को मिले हैं, कौन सी चीज खरीद करने के लिए हम निकले हैं, किस बाजार में आए हैं, तो हम सिद्ध पद लेने को निकले हैं, क्या मोक्षार्थी बनाने में, क्या हमारा टारगेट कौन सा है, सिद्ध पद का है। विश्व में इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, सर्वोत्कृष्ट ये उसने उतार किया है, ऐसा भी बहुत गंभीरता पूर्वक इस मनुष्य की भूमिका का प्रारंभ होता है। मनुष्य की भूमिका का प्रारंभ कितनी गंभीरता से होता है, हम मोक्ष लेने के लिए संपद लेने के लिए निकले हैं, तो हमारी तैयारियां इसके इसके प्रमाण में होनी चाहिए, कोई मामूली बात तो नहीं है। जैसे कोई अरबों का काम होता है तो मामूली बात नहीं, इसकी गंभीरता ऐसे आती से नहीं आती है, तो नुकसान हो जाएगा तो सब खत्म देवाला निकल जाएगा, बड़े व्यापार में नुकसान भी बड़ा मुनाफा भी बड़ा होता है, ऐसे यहां भी नुकसान ऐसा ही है कि इस विषय में भ्रम हो गया, या शांति नहीं है वहां शांति मान ली, या आत्मा नहीं है वहां आत्मा मान लिया, ग्रेत मिथ्या हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रेत मिथ्या हो जाता है। और ग्रेत मिथ्या किस किस को होता है,
धर्म लाने के बाद
किस किस को दुनिया में ग्रेत मिथ्या प्रवाल अपन कहते हैं, कि जो भी जीने पर है तो हम क्या कहते हैं, ग्रेत मिथ्या प्रवाल कहते हैं, उसमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं,
क्रिश्चियन मुसलमान,
क्रिश्चियन मुसलमान में इसमें आते हैं, बहुत कठोर बात हो जाएगी, इस वर्ग में चला जाता है वो, तो कहां से हुए अन्य वृत्ति कहां से हुए, कि भगवान के जिनेश्वर देव का जो अभिप्राय है, अभिप्राय को मत कहते हैं, मत को अभिप्राय कहते हैं, उसी के विरुद्ध वो कहते हैं ऐसा अभिप्राय नहीं, उसके विरुद्ध जो भी मत है तो अन्य मत है, चाहे उसे अन्य मत कहो, चाहे उसे बौद्ध कहो, विष्णु कहो, क्रिश्चियन कहो, मुसलमान कहो, कुछ भी कहो, वर्ग एक ही है, क्लास एक क्लास के विद्यार्थी है।
जैन धर्म में भी होते हैं,
जैन धर्म में से ही होते हैं, कहां से होते हैं, तो जैन होते हैं वहां से होते हैं, जैन भगवान के समोसन था ऋषभदेव भगवान का प्रथम कहां से धर्म चालू हुआ, ये भरत क्षेत्र में इस चौबीसी में, अरे चौबीसी हो गई बात छोड़ रहे हैं अपन, कि एक टोड़ा पूरी सागर के पहले चतुर्थ आरा के प्रारंभ में, ये तो पंचम आरा चल रहा है, ये चतुर्थ आरा एक टोड़ा पूरी सागर का चला, धर्म का प्रारंभ कहां से हुआ, पहले तो इंजीनिया का क्षेत्र था, इधर कर्मभूमि नहीं थी, जो विष्णु भगवान का जन्म हुआ तो उन्होंने सब कर्म सिखाए, गृहस्थ अवस्था में किसी मशीन कृषि वगैरह सब कर्म सिखाए मनुष्यों को, और फिर दीक्षा अंगीकार करके सर्वज्ञ होने सब धर्म सिखाया,
धर्म पहले गृहस्थ स्थान में सिखाए, वो तो धर्म लेकर के आए थे सर्वा सिद्धि में, तो आए हैं अपन खुद तो आए थे सर्वा सिद्धि में से आए, साई समीप दर्शन लेकर के तीन ज्ञान लेकर के आए थे मृत्यु शुल्क अवधि, मुनि के सामने मनोकर्म ज्ञान पैदा होता है तो शंकर देव को और उपदेश देते हैं सर्वज्ञपना काम करने के बाद। तो जिन्हें ध्वनि थी तो 363 हमने बताया गया कितने उस वक्त जन्म हुआ, अन्य मत का जन्म हुआ कि भगवान को समोह करण में सुनने वाले तो सब जहनी थे, अन्य मत तो कोई चालू नहीं हुए थे, सुनते सुनते अपना मती कल्पना से एक नया फन जिसको पैदा हुआ अपनी योग्यता के कारण वो सब अन्य मत में गए, उनके भी पुण्य थे उनको भी अनुसरण करने वाले मिल गए, उनका भी दुर्पिसम हो गया, उनके भी नए शास्त्र निकले, नए मंदिर बने, सब जो भी जो कुछ है अपने अपने जो बात है सब चला इस वक्त, लेकिन कहां से हुआ तो भगवान की वाणी नहीं समझने से ये बात हुआ, समझने से तो ये बात नहीं होती, यानी मोक्षार्थ होते तो नहीं होता, मोक्षार्थ नहीं होते तो ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मोक्षार्थी नहीं होंगे तो चाहे तीर्थंकर को भी सुने चाहे समय सार को भी पढ़े कल्पना अन्यथा कल्पना हो जाएगी। क्या होता है एक बात को हम मान्य करते हैं दूसरी बात को हम मान्य नहीं करते, क्या होता है कई बातें ऐसी होती है कि जिसको मान्य नहीं करे वो चले नहीं सके। तो आस्तिक दर्शन वाले ने आत्मा है वो तो मान लिया, आत्मा नहीं है तो नास्तिक वाले ने लिया, आस्तिक दर्शन में निकले सर्व दर्शन जिसको कहते हैं वो का भी उसने स्वीकार किया, लेकिन आत्म प्राप्ति की जो विधि है उपाय है लाल है इसमें विचार भी हो गए, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, दुनिया से अन्य मत पैदा हो गए, अन्य था कल्पना भी मोक्षार्थी पना नहीं आने से होता है वरना नहीं होता, ये इस मार्ग की एक सुविधा भी है तो सही मोक्षार्थी पना आने से पीछे गिरने का नहीं होता है, तो अग्रहित में से ग्रहित मिथ्या हो गया तो पीछे गिरने का हो गया ना, पीछे चला गया आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया, लेकिन मोक्षार्थी पना हो गया तो ऐसा नहीं होता, इसलिए गुरुदेव ने बहुत गंभीर बात की पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत नहीं वास्तविक शुरुआत है, बाकी की शुरुआत वास्तविक नहीं काल्पनिक है, क्या जो वास्तविक नहीं होती वो क्या होती है काल्पनिक होती है, बहुत गंभीर बात क्या है इस सूत्र पर तो जितना जितना विचार चलता है उतने बहुत गुरुदेव के प्रति बहुमान बढ़ता जाता है। बचा क्या है एक बात करके मनुष्य को सभी प्रकार के नुकसान ही हमें बचा लिया है, क्या कहीं वरना मनुष्य की भूमिका बहुत कमजोर है, जैसे 6 महीने का बच्चा इतना कमजोर होता है तो उसको बिठाते हैं तो वो गिर जाता है, उसको खड़ा रखना चाहते हैं तो गिर जाता है, चलने का कोशिश करता है तो वो गिर जाता है, बहुत कमजोर है, मनुष्य की भूमिका में कमजोरी बहुत है, अनेक प्रकार की कमजोरियां अपने परिणाम में प्रसिद्ध रूप से देखी जाती है कि नहीं, अगर थोड़ा तलाश करे अवलोकन करे तो पता चल जाएगा जा। ऐसी कमजोर अवस्था में ही महापुरुष ने करुणा की, बचा लिया सब कि तुम्हें ऐसे शुरू करना, दूसरे ढंग से शुरुआत कभी नहीं करना, कतई नहीं करना, तुम इस तरह से शुरुआत करो कहीं भी तुम्हें नुकसान होने वाला है। बात ऐसी बनती है कि जिसने पूर्णता के लक्ष्य में मोक्षार्थीपना से जिसकी शुरुआत हुई उसका क्या सबूत है? प्रश्न तो ये अपेक्षित है,
क्या सबूत है मोक्षार्थीपना हमारा हुआ है या नहीं हुआ है? कोई तो कहेंगे हमको तो मोक्ष मिलता है तो क्या हमको दूसरी चीज कौन सी चाहिए? हमें समाधि का हमको कहां पैदा होता है? उसका भी कोई लक्षण होता है क्या? उसका भी कोई लक्षण होता है, उसका स्वरूप है, जैसे ज्ञानी का स्वरूप है ऐसा मोक्ष का भी कोई स्वरूप होता है। ऐसा कोई शास्त्र पढ़े या सुने इसलिए कोई मोक्ष है, या मुमुक्ष मंदिर में लवाजन के पैसे खा रहे हैं इसलिए कोई मुमुक्ष है, ऐसे तो कोई बात नहीं है कि हमारा लिस्ट में नाम है इसका भी एक स्वरूप है तो उसको एक लगन पैदा हो जाती है। हमारे कुछ पैसरित है ये बात बार बार करते थे कि लगनी लगनी चाहिए क्या मुमुक्षु जीव वो अपने आत्महित की लगनी लगनी चाहिए तो लगाई नहीं जाती, लग जाती है। अगर ध्येय सही हुआ ठीक हुआ यथार्थ हुआ मोक्ष का तो लगनी पैदा हो जाती है। लगनी कोई लगाने से लगती है ऐसा तो नहीं बनता। शास्त्रों तो पढ़ाने से पढ़ते हैं, लगनी ऐसी चीज नहीं है। अपूर्व भावना के साथ इसी सिलसिले में उनका यह कहना रहता कि भावना जो है इतनी निष्फल नहीं होती। मैं श्री के वचनामृत का 21 नंबर का यह वचनामृत है कि 14 ब्रह्मांड को फिरना पड़ता है, भावना को फिरना नहीं पड़ता है। कुदरत बंदी हुई है इसके साथ, कुदरत बंदी हुई है। तो इस विषय पर प्रश्न पूछा था बहुत जोर से आपने ये बात निकाली है तो इसके पीछे आपका कौन सा कैलकुलेशन है, गिनती किस बात की है कि चौन ब्रह्मांड को फिराया आपने? बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया था कि देखिए पुण्य के फल में जीव स्वर्ग में जाता है या मनुष्य में भी पुण्य का फल होता है और पाप के फल में नाकी में जीव चला जाता है। तो हम भेजने के लिए कोई मोटर गाड़ी या ट्रेन का साधन की भी जरूरत और ध्यान की भी जरूरत नहीं है कि पैर होकर चल सके, पैर की भी जरूरत नहीं, असंख्य योजन ऊपर नीचे भी चला जाता है बिना साधन। ये कुदरत की व्यवस्था है। जब अशुद्ध परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है ये फल भोगना ही पड़ता है जीव को, तो आत्मा के विशुद्ध परिणाम के साथ कुदरत कैसे नहीं बंधेगी? उसके साथ भी कुदरत बंधी हुई है। इसलिए इसकी भावना स्वरूप प्राप्ति की होती है उसको अवश्य अवश्य स्वरूप की प्राप्ति होती ही है, नहीं हो ऐसा कभी नहीं होता। श्रीमती तो कहते हैं पालों में तो कहते हैं कि सच्ची मुमुक्षुता कभी आई नहीं थी उनको, एक दफे भी नहीं आई। क्या सच्ची मुमुक्षुता ही नहीं आई? और जो कुछ विटमना है वो ये कमजोर अवस्था की है, फिर तो ताकत आती है। स्वरूपानुभव होने से तो आत्मशक्ति का प्रगटपना विकसित भाव होता है, तो ताकत से तो काम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ताकत नहीं है वहां तक अपने आप से जो काम करना है उसमें कोई सत्पुरुष का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिलता है तो एक वाहन में अच्छी सुविधा है। अगर ऐसा योग नहीं है तो ध्येय तो सही होना चाहिए, चूंकि ध्येय के साथ नियत का संबंध रहता है। जिसका ध्येय परिपूर्ण शुद्धि का नहीं है उसको स्वरूप प्राप्ति की नियत ही नहीं है। जिसको नियत नहीं है उसको प्राप्ति कहां से होगी? ये बात निकल चुकी है अच्छी तरह। इसलिए मोक्षार्थीपने के बात जो है वो अपने आप को पूछने की है कि क्या चाहिए मुझे, सिवा मोक्ष और भी कुछ चाहिए? जगत के पदार्थ चाहिए, मान स्थान कुछ भी चाहिए तो इस मार्ग के लायक नहीं। अपनी आत्मा को कहना है कि आत्मा तू इस मार्ग के लायक अभी तुझे दे रहे हैं, तैयारी में आओ फिर आगे बढ़ने। इस विषय में बहुत अच्छा एक वचनावृत्ति मैंने सीखा है कि जिसको एक आत्मा ही चाहिए और उसे जगत में से नहीं चाहिए उसको आत्मा मिले बिना रहता नहीं, क्योंकि वहां उत्कृष्ट पात्रता पैदा हो जाती है। उत्कृष्ट पात्रता पैदा होने में एक सेकंड की देरी नहीं लगती। ये ज्ञान करने की पूर्व शर्त मोक्षार्थीपना है कि मोक्षार्थी होगा वो वेदज्ञान कर पाएगा, लेकिन मोक्षार्थीपना होने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं। कल का कितना भी पापी प्राणी हो एक सेकंड में मोक्षार्थी हो जाता है बिना पूर्व शर्त। इस मार्ग की सुंदरता को हो या सुविधा को बहुत मात्र अच्छी सुंदर है, पात्रता में आने में कोई तैयारी दूसरी नहीं करनी पड़ती है। अभी अभी परिणाम हुआ कि अभी पात्रता चालू होगी, कल तक कुछ भी हो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी परिणाम हुआ अभी पात्रता हो गई। बिल्कुल हार्ड कैश का यह धंधा है, खिलाड़ी का धंधा नहीं करता।
Thank you.